non santi. Calze Savan ma Sarambua. राजस्थान में तो कल से आरंभ हुआ, ये गुजरात बॉम्बे साइड 15 दिन के बाद शुरू होता है। मैं समझती हूँ टोटल नॉर्थ में कल से शुरू हुआ। तुम राजस्थान में बैठे हैं ना, तो सावन मास में क्या करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, मंदिरों में रौनक होती है, पूरा साल नहीं भी करेंगे लेकिन सावन मास में जरूर करते हैं, व्रत भी रखते हैं, तो आज बाबा ने ये क्लियर किया है बाबा की महिमा क्या है। ऐसे महिमा करो तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन भोलेनाथ भी है, निष्काम सेवाधारी भी है, पतित पावन भी है, लिबरेटर भी है, दुख हरता सुख करता भी है। तो ये जो बाबा की महिमा है वो जरूर बाबा ने ऐसा कोई कर्तव्य संगम पर किया है उसकी यादगार है। तो आज बाबा ने खुद बताया है कि ये सब टाइटल मेरे ऊपर क्यों लगे हैं। पहला तो भोलेनाथ, भोला कैसे है बाबा, कहते हैं ना सुदामा ने चावल दिया उसको महल मिल गए, बाबा कहते तुम कहते हो तन मन धन बाबा सब आपका, उसके रिटर्न में मैं ब्यूटीफुल तन देता हूं, अपार धन देता हूं और मन तो पवित्र हो ही जाता है। दूसरा बाबा ने कहा मैं निष्काम सेवाधारी हूं, मुझे तुम्हारे से कोई कामना नहीं है। लौकिक माता पिता को तो कामना रहती है, बेटा बड़ा होगा कमाएगा हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, होती है ना ऐसे। आजकल भले ना भी करते हो लेकिन माँ बाप की तो इच्छा रहती है। बाबा कहता मैं तुम्हारे से ये कामना नहीं रखता हूं क्योंकि मैं बूढ़ा होता ही नहीं हूं, और दूसरा मैं कुछ खाता ही नहीं हूं, तो मैं तुम्हारे से क्या इच्छा रखूंगा। और दूसरे टाइटल भी बाबा ने क्लियर किए हैं, मैं कैसे लिबरेट करता हूं, कैसे पतित पावन हो। एक बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई कि सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हैं तो उनका नाम बदली हो जाता है, लेकिन उनको गुरु मिलता है लेकिन बाप दादा नहीं मिलता है। जब तुम यहां आते हो तो तुमको बाप दादा मिलता है, कितनी बड़ी बात है। हम भी अपना सब कुछ छोड़ते हैं, बाबा के पास आते हैं तो बाबा की गोदी में आ जाते हैं, बाबा की पालना में आ जाते हैं। तो आज सुनेंगे बाबा के बहुत सुंदर रमणीक मधुर महावाक्य और सावन की शुरुआत भी करेंगे। आज है ये जुलाई मास का आखिरी दिन 31/7/2026। मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वो कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवादारी। प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है कैसे? बाबा ग्राहक भी है ना हमारा? उत्तर है, बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूं। कितना भोला ग्राहक है? जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता हूं और उसके रिटर्न में सब नई चीजें देता हूं, नई नई चीजें देते हैं। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसके एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता। तो अभी भोलानाथ बाबा है तो गीत भी कौन सा बजाऊंगा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। कहते हैं ना उसका डमरू डम डम बोले, तो सुबह सुबह उसका डमरू सुनते हैं। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, जो भी गीत है सब भक्ति मार्ग के हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं, बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने दो मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए, तो भी कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? आप हम भी चावल मुट्ठी थोड़ा सा देते हैं तो महल मिल जाते हैं, कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। वो लोग तो कहते हैं ये दान करेंगे तो अगले जन्म में आपका हेल्थ अच्छी होगी, ये दान करेंगे तो एजुकेशन अच्छा होगा। वो तो एक जन्म के लिए, लेकिन हम बाबा को थोड़ा सा कुछ देते हैं तो बाबा रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को क्या देते हैं, खास भारतवासियों को हीरे जवाहरों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं हीरे जवाहरों की महल? किसके रिटर्न में मिलते हैं? हम क्या देते हैं जो हमें 21 जन्म के लिए हीरे जवाहरों के महल मिल जाते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मान धन सब आपका है, सबने किया हुआ है ना बाबा को अर्पित, किया है तो मिलेगा। बाबा ये आपका ही दिया हुआ है, सब निमित्त ट्रस्टी होकर रहते हैं ना। किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया, धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। किसको बहुत धन मिल जाता है, अचानक से किसका अच्छा बिजनेस अच्छा चल पड़ता है, लॉटरी लग जाती है, तो कहते हैं भगवान की मेहरबानी हुई, भगवान ने दिया। कहने वाला कौन? ये भगवान ने दिया, ये कहने वाला कौन? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, अब देंगे तो भविष्य में मिलेगा, पहले कंडीशन है अब देना होगा। उसकी एवज में क्या गारंटी करता है बाबा? अब देंगे तो क्या होगा, उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे। तन देंगे बाबा को, तन सेवा में लगाएंगे तो भविष्य में ब्यूटीफुल तन मिल जाएगा। धन लगाएंगे तो क्या होगा, अपार धन देंगे। और मन लगाएंगे तो मन तो पवित्र होगा ही, लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे। तो देखो हम कितने लक्की हैं, ये गारंटी बाबा हमारे साथ कर रहे हैं। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिलता है, बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। क्या फर्क है भक्ति और ज्ञान में? रात दिन का फर्क है। क्या फर्क है? भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है, और अभी 21 जन्म के लिए मिलता है, तो फर्क हो गया ना। धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं, हरेक को अपनी अपनी राजधानी है। तो कितने राजाएं होंगे यहां, सब राजा बैठे हैं, सबकी अपनी राजधानी होगी। उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं, तो भोला हुआ ना। हम क्या देते हैं? सब पुराना तन देते हैं, जो सेवा में तन लगाते हैं वो भी पुराना लगाते हैं, और धन लगाते हैं वो भी कितना लगाएंगे, सतयुग की भेंट में तो क्या लगाते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप, यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ तो सारी मिल्कत उसकी है, वह होते हैं हद के ग्राहक। यह है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं वो भी ग्राहक कहां से आया है, ये सौदा करने कहां से आया है, मैं परम धाम से आया हूं, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूं, इसलिए दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं। शिव बाबा जैसा दाता है कोई? कोई नहीं। कोई कहेगा ये इतना दानवीर है, इतना दान करता है, इतना धन बांटता है गरीबों में, ये बहुत स्कूल बनवाता है, बहुत कॉलेज बनवाता है, मंदिर बनवाता है, ये स्कूल में सबको बच्चों को फ्री में देता है। लेकिन शिव बाबा जैसा दानवीर कोई नहीं। निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूं। भोलेनाथ बताया मैं क्यों बोला हूं, अब सुनो मैं निष्कामी कैसे हूं। मेरे को कोई भी लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूं कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। बाबा कहता है मैं ऐसे कहता नहीं हूं। लौकिक बाप तो कहता है ना, अरे मैंने तुमको इतना बड़ा किया, इतना पढ़ाया, तुम्हारे पैर पर खड़ा किया, अब तुम मेरी पालना करो, हमको बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। आजकल कहाँ करते हैं, वो भी नहीं करते हैं। नहीं, ये कायदा होता है बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। ये बाप तो कभी बूढ़ा होता नहीं, सदैव जवान है। शिव बाबा कभी बूढ़ा होता नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, इसलिए कहते हैं ना आत्मा को अनादि अविनाशी है। ये तो जानते हो कि लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। बस सब कुछ बच्चों को देते हैं फिर भी सेवा तो होती है ना। माँ बाप क्या करते हैं, जो भी अपनी प्रॉपर्टी है बच्चों को देते हैं कि फिर वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। लेकिन आजकल वो समय नहीं, आजकल तो कहते हैं सब कुछ नहीं दो, सब कुछ दे देंगे तो बच्चे बूढ़ा घर में रख देंगे या सड़क पर ला देंगे। इसलिए कहते हैं लास्ट तक भी आप अपना कर सको इतना रखो, बाकी बच्चों को दो। ये शुरू की बात है कि वो माँ बाप चाहते थे कि ये सब हमारे सेवा करे, लेकिन आज तो माता पिता भी समझते हैं। ये शिव बाबा कहते हैं मैं हूं ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूं। तो न खिलाने के लिए उसको चिंता है कि मुझे बाद में खिलाना क्योंकि मैं खाता नहीं, सेवा करना वो भी चिंता नहीं कि मैं बूढ़ा होता ही नहीं हूं, मैं सदैव जवान हूं, तो वो अच्छा है। मैं आता ही हूं सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाते हैं, रूही सुनती है, हरेक बात रू करती है। बाबा ये लौकिक का एग्जाम्पल देकर भी फिर भी आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। संस्कार भी रू ले जाती है जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहां मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रू परमात्मा ही ठहरा, माना आत्मा ही परमात्मा, ऐसा मानते हैं ना। उसको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता है, कहते हैं आत्मा निर्लेप है, जो कुछ भी है वो शरीर का ही है। अगर आत्मा निर्लेप है, अगर आत्मा निर्लेप है तो बाबा क्या कहते हैं, तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर, ऐसा तो नहीं कहते हैं ना। पाप आत्मा कहते हैं, पुण्य आत्मा कहते हैं, तो लेपछेप किसको लगा, आत्मा को लगा। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा को भी बुलाते हैं ना, वो जब श्राद्ध करते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली, जो रखा था भोजन वो चखा। आत्मा ही टेस्ट लेती है, तो बाबा क्लियर कर रहे हैं कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा को ही सब पाप और पुण्य साथ जाते हैं। कहते हैं पिता की आत्मा आई और भोजन का टेस्ट लिया, तो कौन आया? आत्मा आई, तो आत्मा ने ही टेस्ट लिया। बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहता है मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा, वो तो अभोक्ता है, भोग तो लगाते हैं ना हम बाबा को, तो बाबा खाता है, हमारी भावना तो स्वीकार करता ही है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है कहां तो विराजमान होती होगी, शरीर में किसी ब्राह्मण के तन में आती है तो कहां तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है, या अभी श्राद्ध आएंगे अगले महीने तो हरेक अपने पितरों को खिलाएंगे, किसी के घर में, हरेक के घर में कोई ना कोई तो गया ही होगा, तो उसको खिलाते रहते हैं। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते भी हैं, कुछ पूछते भी हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती है। ये पितृ आदि खिलाना ये भी ड्रामा में नूंद है, ऐसे तो आत्मा चली गई, दूसरा शरीर लिया, दूसरा जन्म ले लिया, दूसरे परिवार में चली गई, उसको यहाँ का याद होगा या नहीं? कहाँ याद होगा, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नटशेल में ड्रामा के रास को बताते हैं, डिटेल में तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते। बाबा कहते हैं, वत कहते हैं, अगर एक एक की समझाने में ही वर्ष लग जाए, एक एक पॉइंट अगर बाबा क्लियर करे तो एक एक बात को क्लियर करने में ही वर्ष लग जाए। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, अभी बाबा का और टाइटल, पतित पावन कहते हैं ना, भोलानाथ कहा, निष्काम सेवादारी कहा, ग्राहक कहा, अभी गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं, दुख हरता सुख करता भी उनको कहा जाता है, वो है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहां लिंग रखा है, जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं, मंदिर में इतनी पूजा शिव बाबा की होती है लिंग के रूप में, तो कभी तो वो आया होगा, कभी कुछ विशेष कार्य किया होगा, तब तो पूजते हैं ना। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, ये देवता भी कभी चैतन्य थे तब तो उन्होंने की महिमा है, वे कृष्ण की पूजा करते, लक्ष्मी नारायण की करते, राम सीता की करते, तो वो जरूर कभी चैतन्य में होकर गए तब तो उनकी पूजा करते हैं। और एग्जाम्पल बाबा देते हैं, नेहरू चैतन्य में था तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं, कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं, पवित्र की ही पूजा करते, उनकी महिमा करेंगे लेकिन पूजा नहीं करेंगे। पूजा किसकी करेंगे? जो पवित्र हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती है। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो बाप आया था फिर अब संगम पर आया है। किस लिए आया है? स्वर्ग स्थापन करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से जक्ष का मंदिर बनाते हैं। जैसा द्वापर युग शुरू हुआ तो पहले पहले किसकी पूजा शुरू हुई? शिव बाबा की। सोमनाथ का मंदिर बनाया। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं, द्वापर में पूजा शुरू की, लेकिन संगम पर प्रैक्टिकल में नॉलेज सुना रहे हैं। वो सत है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में, हेवन तो बनाया, एक खाली मकान तो बनाया, फिर अंदर मूर्ति चाहिए, अंदर राजा चाहिए, महल बनाया तो अंदर राजा भी बाबा तैयार करता है, कहता है मैं हेवन स्थापन करता हूँ, फिर हेवन में रहने के लिए क्या करता हूँ? उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तैयार भी वही कर रहा है। स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? जैसे कोई भी चिप में सब कुछ भरा है, जब तक इंस्ट्रूमेंट में नहीं डालो तो अंदर गाना है, लेक्चर है, क्या है, कैसे पता पड़ेगा? कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में ये पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। ये जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। वो पहले जन्म में था, उसको ही तो तैयार करना है ना फिर से, तो मैं उनके ही तन में प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले ये सब भट्टी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, दादियों के नाम देखो कितने सुंदर सुंदर हैं। तो बाबा ने शुरू में जो इतनी दादियां थी बाबा की बनी, बाबा के पास समर्पित हुई, तो बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर नाम रखे, वतन से नाम आए थे, स्वदेशी पूरा लिस्ट लेकर के आई थी। तो पहले सब भट्टी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु अभी क्यों नहीं देते हैं? अभी भी समर्पित तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन सबका नाम बदली नहीं हो रहा है। परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसलिए नाम रखने से क्या फायदा? तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ, कितने अच्छे अच्छे नाम है, प्रकाश मणि, हृदय मोहिनी, कितने सुंदर नाम है, किसी का हृदय पुष्पा, चंद्रमणि, कितने नाम है, और सब ने अपना नाम सार्थक किया। जो चले गए वो चले गए, लेकिन जो रहे उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी, वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए, है भी सही कहीं। ये जितने नाम आए वतन से, सभी दादियों के नाम है भी। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं। तुम छोड़ते नहीं हो, वो सन्यासी तो घर बार छोड़ देते, तुम छोड़ते नहीं हो, लेकिन घर में रहते हुए मन बुद्धि सब बाबा को समर्पित और ट्रस्टी होकर रहते हैं। तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही, तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों का ऐसे नहीं होता है, बल नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता है। सन्यासी सन्यास करते, घर बार छोड़ते, नाम बदल जाता, लेकिन उनको बाप दादा नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठयोगी हद के सन्यासी और राजयोगी, वो है हद के सन्यासी और हम है ना सब बेहद के सन्यासी। तो है, बेहद के सन्यासी बनना भी तो पड़ेगा। तो बाबा कहते हद के सन्यासी और बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। क्या फर्क बताया? उनको बाप दादा नहीं मिलता, हमको, हम बाबा के बनते हैं तो हमको बाप दादा मिलता है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य, उनको भी वैराग्य है परंतु उनका है घर बार से वैराग्य, और हमारा तुम्हारा क्या है? तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है, तो वो फिर कहां से बेहद का वैराग्य करेंगे। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, ये सृष्टि खलास होनी है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है। देखो ये शिव बाबा परम धाम से आया और इतना बड़ा कार्य कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है। वहां जाना है परंतु पावन होने बिगर तो वहां जा नहीं सकते। दिल में जचता है, क्या जचता है माना, क्या रियलाइज होता है कि बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था जो बाप अब स्थापन करते हैं। तो कितना नशा है, नशे में रहना है ना, कि देखो परम धाम से बाबा आया और हमारे लिए सब कर रहा है। तो बाबा कहते तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज, परंतु है बड़ा सहज, परंतु क्या, परंतु याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रसम रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता, वो लोग इतनी भक्ति करते हैं लेकिन वापस घर तो जाएंगे नहीं। हम बाबा के बने, बाप दादा मिला, अब उनके साथ वापस घर भी जाएंगे। पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है, कौन सा समय? अभी, अभी गेट खुलता है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, ये तो गपोड़ा है। बाप कहते हैं, उसका रिप्लाई क्या देते हैं बाबा? कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, ये गारंटी है। अभी संगम पर ही पहले बाबा जाएंगे, उसके पीछे पीछे हम जाएंगे। बाबा कहते अगर बीच में कोई चला जाए और मोक्ष को प्राप्त कर ले, माना परम धाम में बैठ जाए, तो क्या होगा? तो सारा खेल ही बिगड़ जाए। हरेक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, कई लोग समझते हैं ना हमको मोक्ष मिल जाए, झंझट से छूट जाए, बस परम धाम में बैठे रहे। समझाया जाता है मोक्ष होता नहीं, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये बाबा ही बता सकता है राज गारंटी के साथ कि ऊपर कोई आया ही नहीं है और कोई आ नहीं सकता है, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। ये ड्रामा में आने का ही है पार्ट, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, वो कभी बदली नहीं हो सकता, ये अंडरलाइन है। मक्खी यहां से पास हुई, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होगी। लोगों को उसी में ही डाउट आ जाता है, और बातें फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगाते हैं। लेकिन कहे कि जैसा दिन कल था ऐसा ही दिन है तो समझेंगे, लेकिन वही है वो स्वीकार करना मुश्किल मानते हैं। ये तो जानते हैं बाबा कितना भोला है, पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पार्ट बजाने। शिव बाबा ही पार्ट बजाने बिगड़ नहीं रहता है, उसको भी संगम पर आकर पार्ट बजाना है, तो और कोई पार्ट से कैसे छूट सकता है। वही समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। कहते हैं ना कि सबसे शाहूकार कौन है इस दुनिया में, वो लोग हर साल वो लिस्ट निकालते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड का, तो उसमें नंबर देते हैं सबसे ज्यादा संपत्ति किसकी है, सेकंड नंबर में कौन है, थर्ड नंबर में कौन है, उसमें नंबर वार नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे शाहूकार कौन हमारी लिस्ट में कौन है? उनकी लिस्ट में तो बहुत होगा, एलन मस्क भी होगा और ये अनेक नाम होंगे, लेकिन हमारी लिस्ट में सबसे ज्यादा धनवान कौन? वो कहेंगे अमेरिका। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे शाहूकार ये लक्ष्मी नारायण बनते, उनसे अधिक संपत्ति किसी के पास नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा शाहूकार बनने के लिए, यह रेस है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा शाहूकार कोई होगा? कोई नहीं। अल्लाह अवलदीन की भी स्टोरी बनाते हैं, सुना है ना सभी ने, अल्लाह अवलदीन और उसका जादुई चिराग। वो चिराग को मलता था, वो जिन सामने आता था, वो जो बोले वो करता था। तो एक व्यक्ति बहुत गरीब था, उसको वो कितना धनवान बन गया, उसकी पूरी स्टोरी आती है। वो अपनी किताब है एक, मुरली में आने वाली कहानियां और कहावतें, उसमें भी ये स्टोरी पूरी दी हुई है। ठका करने से कुबेर का खजाना निकल आया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारों का खजाना मिलेगा, माना अथाह धन मिलेगा, अनगिनत मिलेगा, जिसका बेहिसाबी धन कहते हैं, माना कोई हिसाब नहीं, उसकी गिनती नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं, तो बाबा क्या जवाब देता है? जब बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, तो बाबा क्या रिप्लाई करता है? योग में कहते हैं ना बच्चे बाबा को, बाबा माया बहुत आती है, तो बाबा क्या जवाब देता है आपको योग में? बाबा कहते हैं अच्छा बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उठ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। वो एक नाटक है, वो माया कहती है कि मैं तेरे राहों में ये रोड़ा खड़ा कर दूंगा, तो योगी उसका जवाब देता है। वो क्या माया कहती है मैं ऐसा करूंगा, तो योगी उसके सामने उसका और जवाब देता है। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय है, खाद है, डिफेक्ट है, वो निकल जाएगी, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं बाबा। देखो कितना आराम से रखा है, आराम से बिठाया है। बाबा कहते हैं मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बस एक बात बोलता हूँ, दिल से मुझे याद करो। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वो अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी। कैसे बनेगी? किस लिए आए हो यहाँ? इस याद अग्नि से भट्टी में तपाते हैं ना किसी को प्योर करने के लिए, आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो न सके, इसलिए इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं तुमको। बाप कहते हैं उठते बैठते याद करो, बस। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे? वो आसन बताते हैं ना, बाबा कहते हैं उसको योग कहते हैं। तुम आसन आदि कहाँ तक लगाएंगे? एज हो जाती है तो वो भी नहीं कर पाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। ये तो बहुत सहज है ना, ये तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। बल बीमार हो तो यहाँ से यहाँ क्या कर? बाबा कहते हैं बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। कितना सहज है। लेकिन इसका मतलब लेट नहीं जाना है कमरे में, अमृत वेले तो उतना ही है कि बाबा ने कहा है ना लेट कर भी याद कर सकते हो, नहीं। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ, बस। अभी देखो बहुत बढ़िया बात बताई। लोग समझते हैं वहां क्यों जाते हैं, गंगा तट पर। कई लोग चाहते हैं गंगा तट पर ही हमारी मौत हो जाए, ऐसे मानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं उन्होंने फिर लिखा है मृत्यु अच्छी कौन सी होती है, क्या लिखा है? गंगा का तट हो अमृत मुख में हो और हरि का नाम हृदय में हो वो मौत अच्छी मानते हैं। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। कईयों को होता है कि बाबा ने कहा है सच्चा हरिद्वार यही है, सच्चा गंगा का तट यही है, तो हमारा यही प्राण निकले। लेकिन यहाँ प्राण निकलने से नहीं होता है, ये अंदर बाबा की याद हो, मुख में भी ज्ञान अमृत हो, तब प्राण निकले। वो फिर कहीं भी निकले वो श्रेष्ठ है। बाप तो कहते हैं तुम कहां भी बैठो, बल बीमार हो, सिर्फ बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तब प्राण तन से निकले। कहीं भी रहो, अपने घर में भी हो, अपने सेंटर पर भी हो, कहीं भी हो, लेकिन मुख से ज्ञान रतन निकले और दिल में शिव बाबा की याद हो। अंत समय भी बाबा की याद में प्राण तन से निकले। ये प्रैक्टिस करनी पड़े, ऐसे नहीं होता है। वो बहुत काल का अभ्यास बाबा कहते हैं ना, तो जब बहुत प्रैक्टिस होगी तब अंत समय बाबा की याद में प्राण निकलेंगे। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। क्या फर्क बताया, वो लोग वो गंगा का तट मानते हैं और मुख में वो गंगा जल मानते हैं, और ये शिव बाबा की याद, ज्ञान अमृत मुख में, दिल में शिव बाबा की एक की ही याद, और कोई अंत समय याद न आए। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वो तो लड़ाई वालों को कहते हैं जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। और यहाँ ये माया से युद्ध करनी है तब स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन अंत तक लड़ते लड़ते नहीं जाना है, अभी जीत लेना है। वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ, रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल घोर अंधेरा है, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आया है, उनको ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल कहा जाता है। कितने टाइटल आज बाबा ने अपने क्लियर किए। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है, वो है मूल वतन जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो साथ साथ ये रुद्र यज्ञ रचा है ना बाबा ने, तो यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। शिव बाबा के शिवलिंग के साथ अनेक शालिग्रामों की भी पूजा होती है ना, क्यों होती है, क्योंकि बाबा को हमने सहयोग दिया, उनके साथ साथ बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो, इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा, सावन मास में शिव बाबा के साथ हम बच्चों का भी पूजन होता है, शिव बाबा, शिवलिंग और शालिग्राम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरा, बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। आज का वरदान, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पद्म भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी, देखो अंडरलाइन है, एक कदम भी कमाई बिगड़ ना जाए तो बहुत सोच समझ कर श्रीमद प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। स्लोगन वो भी उसी अनुसार है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति स्वतः रहेगी। ये अव्यक्त इशारे, आज 31 तारीख है ना, इस महीने का लास्ट है, कल से हमें नया होमवर्क मिलेगा। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन क्या, न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते, बहुत सुंदर बताया, साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए। वो है साधना। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। अच्छा, ओम शांति।